رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔
الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ العظیم، روحی و ارواحنا لہ الفداء، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس و بینات من الھدی و الفرقان، صلوات علی محمد و آل محمد۔ خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ خدا نے ایک مرتبہ پھر یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ماہ رمضان کی برکات سے استفادہ کر سکیں، اور اس اعتبار سے بھی خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے توفیق نصیب فرمائی کہ ماہ رمضان کے اندر اس پربرکت محفل میں حاضر ہو کر کچھ حرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکے۔ ماہ رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کے اندر جو صلاحیت، جو ذاتیت، جو اس کے اندر استعداد موجود ہے وہ باقی مہینوں میں نہیں پائی جاتی۔ اگر انسان ایک مطلب کو سمجھنے کے لیے باقی مہینوں میں کچھ وقت لگاتا ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ خدا بند متعال اس مہینے میں انسان کا ذہن اس طریقے سے کھول دیتا ہے کہ معارف جتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، ایک مومن اس کو درک کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ایک جگہ پر کہ خداوند متعال اگر چاہے کہ وہ کسی کو ہدایت کرے، یشرح صدرہ للاسلام، خدا پھر اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ ماہ رمضان چونکہ ہدایت کا مہینہ ہے، ھدی للناس کی تعبیر آئی ہے ماہ رمضان کے لیے، ہدایت کا مہینہ ہے، تو اس آیت کا مصداق بنتا ہے انسان کہ خدا اگر ہدایت کرنا چاہے تو یشرح صدرہ للاسلام، تو اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ میں نے مختلف دوسرے لیکچرز میں بھی اسی بات کی طرف تاکید کی ہے کہ اور توجہ دلائی ہے کہ یہ جو ماہ رمضان کے اندر دروس کا سلسلہ ایک چلا آ رہا ہے قدیم الایام میں، شاید اس کے پیچھے ایک فلسفہ یہی ہے کہ ماہ رمضان اس کے اندر انسان چونکہ ہر اعتبار سے آمادہ ہوتا ہے، خدا کی طرف توجہ سب سے زیادہ اسی مہینے میں ہوتی ہے، خدا کی طرف جب توجہ ہوتی ہے تو اس مہینے کے اندر انسان کم سے کم گناہ کرتا ہے باقی مہینوں کے نسبت، تو لہذا یہ انسان پر تکوینی اثر چھوڑتا ہے۔ وہ یہ کہ انسان کی اندر ایسی ذرفیت آ جاتی ہے کہ وہ مطالب کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو میرے ذہن میں آ گئی आलम दीन का नाम भूल गया हूं, शायद जनाब आयतुल्लाह बहजत है या इसी लेवल की शख्सियत है, वो सहरी के वक्त बहुत ज्यादा इबादत करते थे। मसलन लेट नाइट इबादत जो है वो शुरू करते थे और नमाज फजर तक उनकी इबादत जारी और सारी रहती थी। इबादत के बाद जब नमाज पढ़ लेते थे तो उस वक्त एक या दो घंटे के लिए अपने दर्स का मुतालहा करते थे और जाकर दर्स खारिज दे देते थे। उनके बेटे ने एक दिन उनसे कहा कि इबादत के टाइम पर, चूंकि फकत नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, बाकी अमाल भी इबादत हैं, तो आप अगर दर्स का टाइम बढ़ा दें और नमाज का टाइम कम कर दें तो इस तरीके से शायद आप दर्स जो देते हैं उसमें और ज्यादा बेहतरी आ सकती है। तो वो आलम दीन फरमाते हैं कि मैंने ये तजर्बा किया है कि अपनी नमाज का टाइम कम किया है और अपने दर्स का टाइम ज्यादा किया है, लेकिन उस तजर्बे में मैंने ये देखा है कि जो मतलब मैं ज्यादा इबादत करके, नमाज पढ़ के, नमाज शब पढ़ के, तिलावत कुरान करके, जो मतलब मैं एक घंटे के अंदर समझ जाता हूं, अगर वही मतलब मैं बगैर इबादत किए नमाज की सूरत में और तिलावत की सूरत में करता हूं तो उतना ही टाइम लगता है, कोई फर्क नहीं आता उसके अंदर। तो ये बेहतर कि इंसान जो है वो पहले खुदा की इबादत बजा लाए नमाज की सूरत में, कुरान की सूरत में, और फिर दर्स की अपनी जो है वो तैयारी करे। तो मिसाल इसलिए दी है कि इंसान के अंदर बाज़ औक़ात एक ऐसी कैफियत तारी होती है कि जो इंसान को आमादा करती है कि वो मुश्किल से मुश्किल तरीन मतालिब को समझ सके। और माह रमजान वो ज़रूरत है, इससे ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा करने की कोशिश होनी चाहिए इन दुरूस की शक्ल में कि जो मुख्तलिफ जगह पर इनेकार होता है। सलावत बर मुहम्मद व आलिह। तो मौजू जो मेरे जिम्मे लगाया गया था वो है अकीदा का ताल्लुक अमल से, अकीदा और अमल का राबता क्या है, या यूं कहा जा सकता है इसको कि उसूल दीन अकीदे से अमल तक। चंद मुकदमाती बहसें जरूरी हैं ताकि मैं अपने इस असल जो मतालिब हैं उनको बयान कर सकूं। उसमें से एक मतलब खुद अकीदे की अहमियत है कि इंसानी जिंदगी के अंदर अकीदे की क्या अहमियत है। अगर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर थोड़ा सा तफक्कुर करे तो उसको नजर आएगा कि उसकी जिंदगी के अंदर दो बुनियादी चीजें हैं कि जिस पर उसकी जिंदगी चल रही है, एक अकीदा और दो अखलाक। ये इसकी बुनियादी तरीन अनासिर हैं अमल के अंदर के जो इंसान अपनी जिंदगी में अंजाम देता है। मैं दो तीन मिसालें देता हूं। एक मरतबा हम देखते हैं कि एक इंसान सिगरेट पीता है और उससे सवाल ये किया जाए कि तुम सिगरेट क्यों पीते हो, तो मुमकिन है कि वो ये जवाब दे कि चूंकि मेरा काम सख्त है, चूंकि मुझे ज्यादा देर तक जागना होता है, चूंकि मुझे थकावट होती है, तो सिगरेट पीने से सुकून मिलता है। उनके ये जवाब जो है वो सिगरेट पीने वाले जो है वो दे। एक आप फैमिली को देखते हैं कि जिसके अंदर माहौल जो है वेस्टर्न तहजीब का है, वालदैन की खिदमत पर अपनी आजादी को तरजीह देते हैं। अगर उनसे सवाल किया जाए कि क्यों आप अपने वालदैन की खिदमत को तरजीह नहीं देते, तो जवाब मामूलन ये आता है उस तहजीब के अंदर पले हुए अपराध का कि इंसान आजाद खल्क हुआ है, क्यों इंसान अपने वालदैन की खातिर अपनी आजादी की कुर्बानी दे। ये मामूलन मतलब जो सुनने के लिए मिलता है और इसी फिलोसफी के ऊपर ओल्ड हाउस जो है वो कायम हुए, जो मुतासिफाने मगरिब की तहजीब से निकलकर हमारी इस दुनिया के अंदर भी तहजीब के अंदर भी रखना पैदा कर आ चुके हैं। एक खातून अगर आपको बेहिजाब नजर आती है, अगर आप उससे पूछें कि आपने हिजाब क्यों नहीं किया, तो जवाब मामूलन ये मिलता है कि हिजाब महदूदियत लेकर आता है और इंसान आजाद खल्क हुआ है, तो क्यों इंसान अपनी इस आजादी को हिजाब पर कुर्बान करे। और इस किस्म के आपको सवालात अगर आप करें तो जवाब मिलेंगे। दो तीन नमूने आपकी खिदमत में इसलिए बयान किए हैं ताकि अपने मकसद तक और मतलब तक पहुंचा सकें। अगर आपको कहा जाए अब इन तीन अपराध की इस्लाह करनी है, कैसे करेंगे? एक सिगरेट पीता है, एक वालदैन की खिदमत नहीं करता और एक हिजाब नहीं करती। अगर हम ये सिगरेट वाला देखें तो इसके अंदर मसला अकीदे का नहीं है, फकत इंफॉर्मेशन का है। उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिगरेट सुकून का जरिया है। अगर आप इसकी इस्लाह करना चाहते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन बदलनी होगी मेडिकल साइंस के जरिए या और दूसरे जराए के जरिए कि सिगरेट जो है वो अगर वक्ती तौर पर सुकून देती है तो दाइमी तौर पर क्या नुकसान पहुंचाती है। तो मुमकिन है इंफॉर्मेशन अगर तब्दील कर दी जाए उसकी, तो इंसान का जाविया निगाह जो है वो तब्दील हो जाए। लेकिन ये जो दो मिसालें बात वाली हैं कि जहां पर एक बेटा वालदैन की खिदमत नहीं कर रहा और अपनी आजादी को तरजीह दे रहा है, एक खातून हिजाब नहीं कर रही है, बेहिजाबी को अपना रही है, अगर उनके जवाब को देखें तो एक चीज वाज़ह नजर आ रही है कि यहां पर अकीदे का मसला है। अगर आपने इसकी इस्लाह करनी है तो ना तो ये फतवों से चेंज होगी, ना सख्तियों से चेंज होगी और ना ही ब्लेम करने से होगी। अगर इस्लाह करनी है तो अकीदा बदलना होगा। अगर इंसान अकीदे के अंदर तब्दीली ले आए तो मुमकिन है कि बहुत सारी बेहिजाब खवातीन हिजाब करें। मामूलन ये एक मुख्तसर लेवल पे सर्वे किया गया है कि अक्सर मुश्किल दीन की मुखालफत नहीं होती बेहिजाब खवातीन की, बल्कि अकीदे की मुश्किल होती है कि दीन को सही समझा नहीं होता। तो अब अगर आप इसके लिए ये बयान कर दें उस बेटे के लिए भी और इस खातून के लिए भी कि इंसान की हकीकत क्या है, आया इंसान फकत ये बदन मादी है, कि जो हमें नजर आ रहा है हरकत करता हुआ, या ना इसके अलावा भी एक हकीकत मौजूद है कि जो इंसान की असल है, ये बदन उसके इस्तेमाल में है। यानी रूह को अगर साबित कर दें, और ये साबित कर दें कि एक ऐसी हकीकत है कि जो इस मादी दुनिया के साथ रब्ता नहीं रखती, बल्कि एक अलग दुनिया के साथ ताल्लुक है कि जिसको मेटाफिजिक कहते हैं, तो अब यहां से इंसान का जाविया निगाह तब्दील होना शुरू होगा। जब उसको ये पता चलेगा कि मेरी हकीकत फकत ये बदन नहीं है बल्कि रूह भी है, और उस रूह का ताल्लुक मेटाफिजिक से है, इस मादी दुनिया से फकत नहीं है, लिहाजा इसके अलावा भी दुनिया मौजूद है कि जिसके अंदर नेमतें, आसाइशें, लज्जतें मौजूद हैं और इससे कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि ये इंसान के जो वालदैन की खिदमत नहीं कर रहा, किस लिए नहीं कर रहा? क्योंकि इसके जहन में ये है कि अगर मैं वालदैन की खिदमत करूंगा, ये जो मादी लज्जत है ये हासिल नहीं कर पाऊंगा। खातून हिजाब इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इसके जहन में ये है कि अगर हिजाब कर लिया तो महदूदियत आएगी, और बेहिजाबी के अंदर जो आजादी की लज्जत उसको महसूस होती है उससे वो महरूम हो जाएगी। आप जब आके इसके मुकाबले में ये चीज बयान करेंगे कि इसके अलावा भी एक दुनिया मौजूद है, तुम्हारी हकीकत फकत ये बदन मादी नहीं बल्कि रूह भी मौजूद है, तो उस वक्त उसको समझाना, उसकी निगाह तब्दील करना, उसके रवैये में तब्दीली लाना आसान होगा, इस बात की निस्बत कि आप उससे किसी और तरीके से बात करें। तो बस मालूम हुआ कि इंसान की जिंदगी के अंदर बुनियादी तरीन जो चीज किरदार अदा करती है वो अकीदा है। इंसान बगैर अकीदे के कोई अमल अंजाम नहीं देता। आप अगर यहां बैठे हैं, यहां मौजूद हैं और दर्श ले रहे हैं, आपका ये अमल है, लेकिन इस अमल के पीछे अकीदा कार फरमा है। अगर वो अकीदा ना होता तो आप कभी भी इस दर्श के अंदर हाजिर ना होते। अकीदा बहुत अहमियत का हामिल है, इसी वजह से अकायद के ऊपर कुरान ने भी अहमियत दी है, और आयात एक अक्सरियत के साथ अकीदे से मजबूत हैं, और तालीम दीनी के अंदर मुख्तलिफ किताबों के अंदर इस मौजू को बड़े अहसन अंदाज में जो है वो बयान किया गया है। अकीदे को अगर मजीद देखा जाए, इसको हम तकसीम करते हैं उसूल और फुरू के अंदर, उसको मैं जरा सादा जबान में बयान करता हूं ताकि मतलब मजीद समझ में आ जाए। जिस तरह मिसालें देकर आपको समझाया कि अकीदे की अहमियत क्या है, इसी तरीके से अगर हम अकायद के अंदर मुकायसा करें तो आपको बाज अकीदे ऐसे मिलेंगे कि अगर आप एक अकीदा फकत ठीक कर दें उसका, तो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन बाज अकायद ऐसे हैं कि जो उसकी पूरी जिंदगी के ऊपर तासीर नहीं करते, रखते हैं लेकिन उसके खास अपने उस एरिए के अंदर के जहां वो अकीदा मरबूत है। जैसे मसलन आप सिगरेट का मसला ले लें, इसके अंदर जो उसने ये अकीदा रखा हुआ है कि सिगरेट जो है वो इंसान को सुकून पहुंचाता है, तो आप अगर इसका ये अकीदा ठीक करना चाहें तो इसकी पूरी जिंदगी के ऊपर तासीर नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप एक इंसान के लिए इंसान की हकीकत वाज़ह कर दें तो उस वक्त ये उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा, उसके हर हर अमल पे तासीर छोड़ेगा। जिसको हम उसूल दीन कहते हैं, ये वो अकायद हैं कि जिसके तब्दील हो जाने से इंसान की पूरी जिंदगी तब्दील हो जाती है, इंसान की पूरी जिंदगी पर तासीर रखते हैं ये उसूल दीन। इसी वजह से इनको उसूल कहा जाता है, चूंकि इंसान की जिंदगी की जितनी भी जड़े हैं वो इन्हीं से फूटती हैं। अगर इंसान तौहीद का एतिकाद रखता होगा उसकी जिंदगी और लाइफस्टाइल और होगा, और जो तौहीद का एतिकाद ना रखता हो उसकी लाइफस्टाइल और हो। तो ये बात है, इसके अंदर मजीद मिसालें देने की जो है वो जरूरत नहीं है। तो लिहाजा ये जो उसूल दीन हमारे पास बयान किए जाते हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत और मुताले की जरूरत है, चूंकि इंसान की अपनी जिंदगी के लिए भी जरूरी है, और अगर चाहते हैं कि अंबिया का काम अंजाम दें मुआशरे की इस्लाह की सूरत में, तो फिर अपने अकीदे ठीक होंगे तब जाकर इंसान दूसरों की इस्लाह कर सकेगा। और जैसा कि मैंने आपको बयान किया है, मामूलन अगर कोशिश की जाए मुआशरे को सख्ती के साथ हल करने की और उसकी इस्लाह करने की, तो ये मुआशरे कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन अगर उनके अकायद को ठीक करने के ऊपर वक्त लगाया जाए तो शायद मुआशरों की इस्लाह जल्दी और बेहतर अंदाज में हो जाए। मैं एक तो इस्तेलाहें आपकी खिदमत में बयान करता हूँ, मामूलन के जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के स्टूडेंट होंगे वो उन्होंने ये सुनी होंगे इस्तेलाहें, या जो मुताले का शौक रखते हैं उनके मुताले में ये इस्तेलाहें गुजरी होंगी। जरूरी है, आज के दौर की जरूरत है। जिनको हम अकायद कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं वर्ल्ड व्यू, फारसी में जिसको कहते हैं जहान बीनी, उर्दू में कहते हैं कायनाती तसव्वुर या तसव्वुर कायनात, जहान बीनी वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू के मुकाबले में जो एक इस्तेलाह पाई जाती है उसको कहते हैं आइडियोलॉजी। जहानबीनी का ताल्लुक, वर्ल्ड व्यू का ताल्लुक इंसान के फिक्र से है, और आइडियोलॉजी का ताल्लुक इंसान के अमल से है। मसलन आपकी जहानबीनी और वर्ल्ड व्यू के अंदर एक ये अकीदा पाया जाता है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई है, और वो ही सब चीज का खालिक है, और हमने उसी की तरफ पलट कर जाना है। ये अब एक अकीदा है, एक जहानबीनी है, एक वर्ल्ड व्यू है। इसके मुतनासिब जो आप जिंदगी गुजारेंगे, जो आप लाहया अमल अपनाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर, उसको कहेंगे आइडियोलॉजी। अगर बहुत सादा और ज्यादा अल्फाज में बयान करूं, अकायद जहानबीनी है, आपकी फिक्र जिसको आप गलत उर्दू में क्या कहते हैं फिका, फिक्र आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी के अंदर दस्तूरुल अमल होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अकीदे के अंदर जानना होता है। जब जान गए तो अमल के मरहले में फिर आइडियोलॉजी आती है। हम जितने भी यहां दस्तूर अमल रखते हैं, चाहे वो मुल्क के हों, चाहे वो फैमिली के हों, चाहे अपने हों, चाहे जो भी हो, जो आइडियोलॉजीज मौजूद हैं सब की सब, उसके पीछे हतमन कोई ना कोई वर्ल्ड व्यू मौजूद होता है। मसलन अगर आपको खवातीन के हुकूक के हवाले से नारा लगाते हुए ये अफराद नजर आए कि आजादी मुतलक होनी चाहिए, ये जो कहा जा रहा है इसको कहते हैं आइडियोलॉजी। चूंकि इसमें करने या ना करने के हवाले से बात हो रही है, और करने या ना करने का ताल्लुक आइडियोलॉजी से होता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम इस आइडियोलॉजी के पीछे जाकर देखते हैं कि कौन सा फिलॉसफी इसके ऊपर कार फरमा है, कौन सा अकीदा इसके पर इसके पीछे कार फरमा है, उसको कहते हैं जहानबीनी या वर्ल्ड व्यू। असल ये जो आकर ख्वातीन के हुकूम के अंदर आजादी मुतलक का नारा लगा रहे हैं, हम जब जाकर देखते हैं तो इसके पीछे हमें ह्यूमनिज्म का नजरिया नजर आता है, क्योंकि जहानबीनी के अंदर, उनकी वर्ल्ड व्यू के अंदर इंसान के ऊपर जो निगाह है वो मादी है, और इंसान की जो शनाख्त है उसका ताल्लुक जहानबीनी और वर्ल्ड व्यू से है। बस अकाइद का ताल्लुक फिक्र से होता है और आइडियोलॉजी का ताल्लुक इंसान के अमल से होता है। इंसान मामूलन अपनी जिंदगियों के अंदर आइडियोलॉजी से सरोकार रखता है, इसीलिए जहानबीनी और अकाइद की जो बहसें हैं वो मुश्किल लगती हैं, चूंकि मामूलन मुआशरे में होती नहीं है। मसलन आप यही देख लें कि ये जो ख्वातीन के हकूक के लिए निकलने वाली ख्वातीन जो आइडियोलॉजी बात बयान कर रही होती हैं कि ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, अगर उनको बिठा कर कहा जाए कि आपकी इन बातों और शिहार के पीछे ये फिलॉसफी मौजूद है, तो सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, चूंकि ये बहसें जो है उन्होंने खुद सुनी नहीं हुई है कि आइडियोलॉजी के पीछे हतमन कोई ना कोई फिलॉसफी होती है, जहानबीनी होती है और अकीदा जो है वो कारफरमा होता है। जब यहां तक मतलब वाजे आपके लिए हो गया, तो अब एक और नुक्ता जो बयान करना चाहूंगा वो ये है कि वक्त कितना है मेरे पास अभी 20 मिनट। आइडियोलॉजी के अंदर जैसा कि मैंने बयान किया कि इसका राबता अमल से होता है, मिल्लतें उस वक्त तक तरक्की और सआदत की मनाजिल तय नहीं कर सकती कि जो जहानबीनी या वर्ल्ड व्यू ना रखती हो और उसके मुतनासिब आइडियोलॉजी ना रखती हो। कभी ये मिल्लतें तरक्की की मनाजिल और सआदत की मनाजिल तय नहीं कर सकती। मसलन अक्सर औकात आप सवाल और दाद उठाते हैं जवान कि हम तशय्यो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ जगहों के अंदर मकाम में पीछे नजर आते हैं, और फिर जवान ये सवाल करते हैं कि क्या करना चाहिए हमें कि हम भी आलमी तशय्यो के साथ मुत्तसिल हो सकें। होता है अक्सर सवाल, जिस महफिल में भी जाते हैं अक्सर यही सवाल रिपीट होता है कि हम पाकिस्तानी तशय्यो क्यों हैं पीछे। तो जवाब उसका यह है कि जहां दूसरे असबाब कार फरमा है, एक सबसे बड़ा जो मसला यहां कार फरमा है वो यही आइडियोलॉजी और अकायद का है। इंसान जितना अकायद में कमजोर होगा उसकी आइडियोलॉजी उतनी ही जईफ होगी, और अगर आइडियोलॉजी में जईफ रहा कमजोर रहा तो ये कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर चाहते हैं कि खुद भी सआदत तक पहुंचें और अपने साथ मुआशरे को भी सआदत तक लेकर जाएं, तो अकायद के ऊपर मेहनत करनी होगी और उस उन अकायद के मुतनासिब जो आइडियोलॉजीज बनती हैं उनको अपनाना होगा और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। हमारा और खुदा का राबता गनी और फकीर का है, ये अकीदा आपने बना लिया, लेकिन इसके मुताबिक अमल ना किया तो ये इंसान एक कदम भी सआदत की तरफ नहीं बढ़ा पाएगा। अब आप अपनी जिंदगियों में थोड़ा ये मुआशरे के अंदर जरा नजर दौड़ा के देखें, अकीदों के एतबार से अगर देखें, हर कोई सही अकीदा बाज़ोकात बयान कर रहा होता है कि खुदा है, इमाम है, इमाम का मकाम ये है, नबूवत है, महाद है, महाद के मुताबिक क्या जिंदगी गुजारनी, ये अकीदा मौजूद होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके मुताबिक अमल नहीं हो रहा होता। जब अमल का मकाम आता है उस वक्त इंसान कभी ये बहाना बनाता है कि मेरी नौकरी का मसला है, कभी ये बहाना बनाता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी ये बात मसल मुख्तलिफ तरीकों से इंसान अमल से दूर जाता है। और ये अपने जहन के अंदर बिठाल अब इंसान ने तोजी करनी थी अपने इस अमल की, तो फिर ये फिलॉसफी बनाने की कोशिश की है कि इंसान के लिए फकत अकीदा अहमियत रखता है, अमल की कोई गुंजाइश नहीं। यानी अमल ना भी करे तो इंसान अकीदे के जरिए शहादत तक पहुंच जाता है। लेकिन कुरान उठाकर देखें, हमें जगह जगह पर ये नजर आता है कि इरशाद हो रहा है कि सूरह असर की आयत ज्यादा वाज है कि इन्नल इंसान अल्लाह के खुसर इल्ला लजीन आमनु व अमल सालिहा। इंसान खसारे में है, असर ये है कि खसारे में जा रहा है इंसान। इस खसारे से निकलने का एक ही जरिया है कि इंसान ईमान लेकर आए और अमल सालेह अंजाम दे। ईमान किस पे लेके आए? अकायद पे। ईमान पे बहस करूंगा अगले दर्स में कि इंतहाई अहमियत का हामिल ये मफहूम है कि जिसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है कि अगर ईमान ले आया जाए अपनी उस जहानबीनी और अकायद के ऊपर और उसके मुताबिक अमल अंजाम दे दिया जाए, अमल सालेहा साले अमल अंजाम दे दिया जाए, तो इंसान खसारे से बाहर आ जाएगा। तो अब ये कुरानी एक असल मौजूद है कि अकीदे और अमल का आपस में गहरा राबता है कि अगर अमल किया और अकीदा ना हुआ पीछे, तब भी ये अमल आपके अंदर कोई बेहतरीन तब्दीली नहीं ला सकेगा। और अगर अकीदा फकत हुआ, अमल उसके अंदर मौजूद ना हुआ, तो ये अकीदा भी आपके किसी काम नहीं आएगा। क्योंकि अकीदा एक नजर आने वाली चीज नहीं है। आप कहते हैं कि मैं मसलन खुदा पर अकीदा रखता हूं, तो जबान से आप कह रहे हैं, मुझे कब पता चलेगा कि आपको खुदा पर ईमान है? कि जब आप अमल करके दिखाएंगे, जब आप इस अकीदे के मुताबिक अमल कर रहे होंगे, उस वक्त देखने वाला ये कहेगा कि वाकईन इस इंसान के अंदर ये अकीदा पाया जाता है। और एक इंसान जो है वो इस अकीदे पर अमल ना करे लेकिन लकलकाए लिसानी उसने बनाया हो कि मैं खुदा पर ईमान रखता हूं, तो ये अकीदा उसको कभी भी शहादत तक नहीं पहुंचाएगा। तो बस एक ये चीज जहन के अंदर रखें कि अकीदा अगर अमल से जुदा हो जाए तो उम्मतें हलाक हो जाती हैं। अगर उम्मतों ने इस्लाह पानी है, अगर उम्मतों ने शऊर पाना है, तो जो अकायद हैं उन अकीदों के मुताबिक अमल करने की जरूरत है। सलावत पर मुहम्मद खुदाबंदे मुताल से दुआ गो हैं कि खुदाबंदा हमें दीन को सही माना में समझने की तौफीक नसीब फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। खुदाबंदे मुताल से दुआ गो हैं कि खुदाबंदा हम सब के मरहूमीन के दराजात बुलंद फरमा, इस माह पुर बरकत के सदक़े उनको जवार मासूमीन में जगह अता फरमा, تمام مرحومین تمام شہداء ملت کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور انہیں ان کے سچے سپاہیوں میں شمار فرما.